मेरा नाम पीर फारूक शाह सरहंदी है और मैं बिलोंग करता हूँ सिंध के एक रूहानी ख़ानदान से जो पीर सरहंदी फैमिली कहलाती है। हर किसी की ज़िंदगियों में अचानक से कोई ना कोई अंदाज से तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो हम जिस घराने के लोग थे तो हमारा हाँ तसव्वुर ही नहीं था कि अपनी हवेलियों को छोड़ें, अपनी खानकाहों को छोड़ें और अपने बुज़ुर्गों के ताल्लुक़दारी को छोड़ें। हम जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों से जिनसे हज़ारों साल से एक रिश्ते हैं हमारे। 1994 में मैंने इरादा रखा कि मैं हट कर अपनी आबा व अजदाद के तर्ज को छोड़ के और मैं कोई नई ज़िंदगी शुरू करूं। तो मैं कराची में आया और कराची में आकर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से मोहतरमा शहीद होने के बाद कराची शहर में एक अमन अमान का एक बहुत बड़ा मसला हुआ जो लगातार 2013-14 तक जारी रहा। फिर जब वो वहाँ पर अमन अमान का मसला हुआ तो हम लोग मजबूरन निकले अपने कारोबार बंद करके और इस तरफ जो गुलशन म्यांमार की तरफ वहाँ रिहाइश रखी। 2010 में एक शदीद सैलाब आया जो 7 अगस्त को टोरी बंद वो उसमें शुगाफ हो गया और वो बंद टूट गया जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा सिंध जो थी ना वो डूब गई, जिसकी वजह से पहली मरतबा सिंध जो है वो हिजरत करने लगी और सिंध के लोग जो थे वो अपने आबा व अजदाद के गांव को इलाकों को छोड़कर और वो कराची में की तरफ उन्होंने रुख किया। और खुशकिस्मती उस टाइम पर कि जो गवर्नमेंट थी उसने भी ऐलान कर दिया कि आपको हम गाड़ियां देते हैं, आप वहां से निकलें और ये महफूज जगह है कराची, वहां पे आकर आर्जी रिहाइश इख्तियार करें। जो गवर्नमेंट ने कराची में मुख्तलिफ जगहों पर कैंप कायम की गवर्नमेंट के नाम पर। यह सिलसिला जब हमने देखा कि पूरा इलाका मुकम्मल बढ़ चुका है और वहाँ पे अब गवर्नमेंट के पास कोई गुंजाइश नहीं है लोगों को बिठाने की और मदद करने की, अब हुकूमतें अपीलें करने लग गई कि अवाम आए और वो एनजीओ मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आकर और हमारी इसमें मदद करें। तो अब हमारे ऊपर कौमी फरीदा था कि हम सब अपने घर को छोड़ें, आराम को छोड़ें, सुकून को छोड़ के और फिर हम निकल पड़ें। उस टाइम मेरी जेब में सिर्फ 7,500 रुपये मौजूद थे, जो 7,500 रुपये मैंने उठाकर और मैं एक डेकोरेशन की दुकान पे गया, उनको मैंने 3,000 रुपये दिए और उनसे मैंने 12 कुर्सियाँ, 2 टेबल और इस तरीके से हमने सामान लिया और लेकर आकर हमने गुलशन म्यांमार मोड़ पर आकर अपनी कैंप कायम की। जो पैसे बचे थे उसका मैंने आटा लिया, दाल और घी लिया। जो जो हम देख रहे थे बच्चे आ रहे थे, फैमिलीज आ रही थी, उनको हम उसमें से 2 किलो 2.5 किलो के हिसाब से आटा निकाल कर दे रहे थे और उनको कह रहे थे ये लो और जाकर अपना आरजी गुजारा करो। वहाँ पे पहला कारवा मेरे पास एक नौजवान मेमन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा ये हमारी जेब खर्ची है उससे हमने ये सामान लिया है। वो एक बहुत बड़ी मजदा थी और उन्होंने आकर हमें सपोर्ट की, मतलब कि हमारे पास जखीरा जमा होने लगा, अब हमारे पास जो रहने लगा उसको हमने राशन देना शुरू कर दिया। हमने कहा इतने लोगों को हम किधर बिठाकर, रोड पर बैठेंगे तो ये रोड जाम हो जाएगा। हमने लोगों को उठाकर सुपर हाईवे के राइट एंड पर यानी हैदराबाद से कराची के लिए जो रास्ता आता है हम उस तरफ बैठ गए और उस तरफ हमने लोगों को बिठाना शुरू किया। अच्छा, जैसे जैसे बिठाना शुरू किया क्योंकि लोग तो परेशान थे, बदहाली थी, दरबदरी थी, कोई किसी को जान नहीं रहा था, कयामत सुगरा का एक मंजर था। तो लोग आते गए आते गए, 12 दिन के अंदर अंदर मेरे पास 2100 खानदान पहुंच गए। तो हमने इनके खेमों का इंतजाम शुरू कर दिया और कराची वालों ने किसी भी अंदाज से हमें उन्होंने तना नहीं छोड़ा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चैलेंजेस थी, मसलन मेरे पास तकरीबन वो लोग आ गए जिनके पास एजुकेशन नहीं थी, जिनके पास अपनी जिंदगी गुजारने के लिए 0 के बराबर भी कोई वसाइल मौजूद नहीं थे। उन सबको मुंह देना हमारे लिए एक बड़ा मसला था। फिर यहाँ पे तालीम की कमी की वजह से मजहबी इंतशार हद से ज्यादा मौजूद था। सैलाब जब आता है तो वो ये देख के नहीं आता कि हिंदू को सैलाब में जाना है या मुसलमान को डबोना है या सिख या ईसाई को या देवबंदी या बरेलवी को, शिया या सुन्नी को, तो वो सैलाब सबके लिए बराबर आता है। अब वो वहां पे जो अलग अलग थे तो यहाँ पे उन सबको मुझे साथ बिठाना पड़ा, जो कोई कबूल कर रहा था कोई कबूल नहीं कर रहा था। यह हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज मौजूद था। फिर कराची के जो हालात थे, चंद शरपसंद अनासरों की वजह से कि वहां पे मजहबी इंतहा पसंदी और लिसानी तासब, फिर जो लैंड माफिया ग्रुप्स वो इनको मिसयूज करना चाह रहे थे, इनको लेकर जाना चाह रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ अंदाज से इनको रास्ते दिखाने लगे। हम सबको रोकने के लिए ये सबको हमें मुकाबला करना पड़ा। बस ये सबसे पहला मेरा काम था कि मैंने इनको ये एहसास दिलाया कि मैं आपका मोहसन हूँ, मैं आपका खैरख्वाह हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोगों को अच्छी जगह में बिठाना, मैं अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपकी, आपके बच्चों की, मैं उसको लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो हालात हैं वो आपके सामने, इनको पता चल गया था कि फारूक शाह के पास पैसा नहीं है, फारूक शाह के पास वसाइल नहीं है, फारूक शाह के पास कबीला नहीं है, फारूक शाह का खानदान अगर था भी सही तो अब नहीं रहा, अब हम इनके खानदान बन गए, अब हम इनके साथी हो गए, अब हम इनका कबीला हो गए और हम इनके बिरादरी बन गए। तो इन लोगों ने भी मेरे साथ बिल्कुल ये भी चपक गए और जुड़ गए, इन्होंने भी न छोड़ने का फैसला किया कि कोई भी आ जाए लेकिन ये कि हम साईं के अलावा किसी से नहीं करेंगे। ये लोगों के सारे दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि जो ज़मीन पे 500 साल से गोट था या 200 साल से गोट था या 100 साल से, तो सैलाब आया उसमें इनका गांव मुकम्मल चला गया और हुक्मरानों ने कहा कि आप कराची आ जाओ, ये कराची आ गए। जब वापस गए तो वडेरे ने क्या किया कि वहाँ ट्रैक्टर चला लिया और उसको एग्रीकल्चर ज़मीन बना दी, गोट का नामो निशान ख़त्म हो गया। जब नामो निशान ख़त्म हो गया तो अब वो 50 लाख रुपए का एकड़ हो गया, तो वडेरा तो नहीं छोड़ेगा ना हमारे को, तो ये फिर बेचारे वापस आ गए। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सिंदाबाद और न्यू सिंदाबाद जो 2022 का सैलाब आया वो मिलाकर, ये हालिया जो 2023 की मरदमशुमारी हुई है उसमें 1,52,382 लोग डिक्लेयर हुए हैं कि अब इतने लोग हो गए हैं कि अब गवर्नमेंट को मुड़ के इनको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने सिवाय एक अच्छाई के और कोई अच्छाई नहीं, ना हमारे को पानी हुकूमत ने दिया है, ना हमारे को खुराक हुकूमत ने दी, ना हमें इलाज हुकूमत ने दिया। सबसे बड़ी दुश्मनी उन्होंने हमारे साथ ये निभाई है कि हमारी एजुकेशन, आज 15 साल में भी हम कराची शहर के मेन शहरा में बैठे हमें एजुकेशन नहीं दिए। लेकिन एक उनका एहसान है कि यहाँ पे हमें बैठने दिया है, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन कोई 70 के लगभग बेवाएँ रहती हैं, वो ऐसी बेवाएँ हैं जिनका शोहर नहीं है, ख़ानदान नहीं है, 2 या 3 बच्चे हैं। हमारे पास 24 वो बच्चे बच्चियाँ हैं जिनके न माँ हैं न बाप हैं, हम उनके माँ बाप हैं, रोज़ी के ज़राए वसाइल पैदा करके और यहाँ पे आकर उन लोगों ने रोज़ी करनी होती है, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने लिए लोग निकलते हैं, बारिशें होती हैं तो 5-5 फीट इसी आबादी के अंदर फिर पानी खड़ा होता है। हमारे लोग जुगिया निकाल के रोड के ऊपर लगाते हैं, हमारे पास कब्रिस्तानों की तकालीफ को, हमारे यहाँ इंसानी मजहबी और बाकी मामलात को होते हुए भी कोई हमारी खैरियत मालूम करने नहीं आता। हमारे जनाजे उठते हैं तो हम चंदे करते हैं और तब जाकर हम उनकी तदफीन करवाते हैं। हमारे पास शादी ब्याह होती है तो उसके लिए भी हम आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको भी 10-10 रुपए की सूरत में जाके इलाज करवाते हैं। मैं इस टाइम पर एक दो बातें ये कहूँगा कि इलेक्शन से पहले मेरे वोट इंदराज किए जाए। जो ये लोग इख्तदार में ऐवानों में जाकर बैठ के थे ना कि हमको अवाम ने चुना है, तो मैं असल अवाम की ताकत दिखा दूँ, मेरा सिर्फ वोट इंदराज करके दे दें। मैं इलेक्शन कमिश्नर को अपील करता हूँ कि मैं मर्दमशुमारी में 15 साल से इधर हूँ, मेरे पास शिनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, मेरी NICs इधर की नहीं बनी तो कोई बात नहीं है, मेरी अपने इलाकों के बनी हुई है, मैं रिहाइश पसंद इधर का हूँ, मुझे वोट की इधर इजाज़त दी जाए, मैं यहाँ वोट डालूँ और मेरे को इलेक्शन में हिस्सेदार बना दो, एक मुतालबा। दूसरा मुतालबा ये है कि जो कोटाएँ आती हैं, माजूर की कोटा आपने रखी हुई है, नाबीनों की रखी हुई है, आपने ऑफिसरों की रख ली है, आपने मरे हुए लोगों की रख ली है, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने आज भी तो जागीरदारों के लिए अलग कोटा रखी हुई है, MNA MPS के लिए अलग रखी हुई। मैं कहता हूँ इन सैलाब मुतासिर सिंदाबाद के जो 1.5 लाख लोग हैं इनके लिए हमें कोटा दी जाए, वो एजुकेशन में हो, वो हेल्थ में हो, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं उसमें मुझे कोटा दो, मेरे लोगों को आप गवर्नमेंट की जॉब दो। ठीक है, तालीम नहीं है तो क्या हुआ, क्या ये स्वीपर भी हो सकते हैं कि मैं कहूँ मुझे पानी दे दो, गैस दे दो, बिजली दे दो, ये मुझे नहीं देंगे जब तक मेरे लोग इलेक्शन में कामयाब होकर नहीं आएंगे।